समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला।
जी हाँ, भाग्य या किसी के भी भरोसे बैठकर जिंदगी में सफलता नहीं प्राप्त की जा सकती। भाग्य या कोई व्यक्ति विशेष साथ दे या ना दे, कर्म को सर्वोपरि मानते हुए आगे बढ़ते रहना ही कामयाबी का मूल मंत्र होता है। जो व्यक्ति लगातार कर्म करता रहता है तो उस कर्म के आगे तो किस्मत भी घुटने टेक देती है। इसलिए लगातार सकारात्मक कर्म करते रहना चाहिए और कामयाबी भी हासिल करते रहना चाहिए। वेल, हफ्ते की दूसरी नई सुबह, नया दिन और ढेर सारी नई चुनौतियां, और साथ में समाचार पत्र का कार्यक्रम आज सवेरे, जिसे प्रस्तुत करने के लिए आकाशवाणी स्टूडियो में मौजूद हैं श्रोताओं के ही अपने रवि कपूर और सुभद्रा रामचंद्रन। स्वीकार कीजिए हम दोनों का नमस्कार।
नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग रवि, एंड हेलो देयर लिसनर्स। राइज एंड शाइन, इट्स अ रेनी वेट ट्यूसडे मॉर्निंग हियर इन दिल्ली, एंड ऑफ कोर्स रवि, वी'd लव टू सी सम सनशाइन आल्सो, राइट?
बिल्कुल।
एंड सो रवि, लेट अस बिगिन राइट अवे विद दिस एडिशन ऑफ आज सवेरे विद सम न्यूज़ हेडलाइंस।
जी, शुरुआत आप ही करेंगे आज।
यस ऑफ कोर्स रवि। Prime Minister Narendra Modi will inaugurate localized production of hybrid battery electrodes and flag off battery electric vehicle exports to 100 countries at Hansalpur near Ahmedabad in Gujarat today morning. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. A report from our correspondent.
India initiative success, the Prime Minister will inaugurate and flag off the Suzuki's first global strategic battery electric vehicle, BEV, manufactured in India. These made in India BEV are set to be exported to more than 100 countries, including key markets like Europe and Japan. Taking a giant leap towards self-reliance in clean energy, the PM will also launch the next phase of India's battery ecosystem with the start of local production of hybrid battery electrodes at the Gujarat-based TDS Lithium Iron battery plant. This joint venture is expected to accelerate the domestic manufacturing and drive innovation in clean energy technologies. Interestingly, over 80% of battery's value will now be locally produced, which will boost India's green manufacturing footprint. Aparna Khund, Akashvani News, Ahmedabad.
वित्त मंत्रालय ने नई शुरू की गई एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में एक मुश्त एक तरफा शामिल होने की सुविधा शुरू की है। एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार ये सुविधा यूपीएस धारकों को अपनी सेवानिवृत्ति के एक वर्ष पहले या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के 3 महीने पहले उपलब्ध होगी। बर्खास्तगी, निष्कासन या अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करने वाले कर्मचारी इस सुविधा के पात्र नहीं होंगे। एक बार एनपीएस का विकल्प चुन लेने पर कर्मचारी सुनिश्चित भुगतान सहित यूपीएस के लाभों के हकदार नहीं होंगे। यूपीएस से निकलते समय सरकार का 4% अंतर अंशदान कर्मचारी के एनपीएस कोष में जोड़ दिया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य पेंशन लाभों को सुव्यवस्थित करना और लचीलापन प्रदान करना है। इसके अलावा एनपीएस को दीर्घकालिक सेवानिवृत्ति समाधान के रूप में सुदृढ़ बनाना है। सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में यूपीएस शुरू की है। यूपीएस कर्मचारियों को सुनिश्चित भुगतान प्रदान करेगी। 20 जुलाई 2025 तक लगभग 31,555 केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प चुना है। इस योजना के अंतर्गत आने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 है। यूपीएस को एनपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक विकल्प के रूप में पेश किया गया है।
The government has set up 3 high-level committees to celebrate the 150th birth anniversaries of Sardar Vallabhbhai Patel and tribal icon Birsa Munda, and the birth centenary of Atal Bihari Vajpayee. According to the Union Culture Ministry, Prime Minister Narendra Modi will be the chairman of all the 3 committees. The committees tasked to approve plans, programs, supervise and guide the commemoration ceremony across the country. We have a report.
born on 31st October 1875 in Nadiad, Gujarat, Sardar Vallabhbhai Patel played an instrumental role in the country's struggle for freedom. He had successfully accomplished the task of integrating 565 princely states into the Union of India within a remarkably short span of time, a feat unprecedented in history. Vallabhbhai Patel is also known as the Iron Man of India. Similarly, Birsa Munda is a freedom fighter and a celebrated tribal icon. Tribal movements against the British rule, like the Ulgulan or Revolution led by Birsa Munda, were not only pivotal in challenging the British oppression but also inspired a national awakening. Birsa Munda, revered as Bhagawan by tribal communities, led a fierce resistance against the exploitative colonial system, making his birth anniversary on 15 November a fitting occasion to honor tribal heroes. Meanwhile, Atal Bihari Vajpayee was a poet, writer and a statesman who served as Prime Minister for 3 terms. To commemorate the birth anniversary of Atal Bihari Vajpayee, 25th December is observed as Good Governance Day. During his tenure as Prime Minister, India carried out the Pokhran 2 nuclear test in 1998. In 2015, he was conferred upon the country's highest civilian honor, Bharat Ratna. Vishnu PS, Akashwani News, Delhi.
निर्वाचन आयोग ने बताया है कि बिहार से 99.11% मतदाताओं से दस्तावेज प्राप्त हो गए हैं, जबकि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत दावों, आपत्तियों और दस्तावेज जमा कराने के लिए अभी 7 दिन बाकी हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार दस्तावेजों की दैनिक संग्रह दर 1.64% है। 1 सितंबर तक की समय सीमा निर्धारित होने के बावजूद केवल 0.89% मतदाताओं ने अभी तक अपने दस्तावेज जमा नहीं किए हैं। आयोग ने कहा है कि बूथ स्तरीय अधिकारियों और स्वयंसेवकों की मदद से चलाया जा रहा ये संग्रह अभियान निर्धारित समय से पहले पूरा होने की उम्मीद है। पूरे बिहार में 243 निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों और 2,976 सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन एक साथ किया जा रहा है। मसौदा मतदाता सूची में सूचीबद्ध 7,24,00,000 मतदाताओं में से अब तक 0.16% दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। इनमें राज्य के 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय एजेंटों ने 10 आपत्तियां दर्ज की हैं। अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं की 1,21,143 आपत्तियां भी शामिल हैं। विधानसभा क्षेत्रों के गैर मतदाताओं ने कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। आयोग ने पुष्टि की है कि बिहार में SIR प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। पात्रता दस्तावेजों के सत्यापन सहित दावों और आपत्तियों पर सभी निर्णय 25 सितंबर तक पूरे कर लिए जाएंगे। 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। और अब अगली खबर की ओर। भारतीय नौसेना आज विशाखापत्तनम स्थित नौसेना अड्डे पर उन्नत स्टील्थ युद्ध पोत उदयगिरी और हिमगिरी का जलावतरण करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये पहला अवसर होगा जब दो अलग अलग पोत कारखानों में निर्मित दो अग्रणी सतही युद्धपोतों का एक साथ जलावतरण किया जाएगा, जो भारत के पूर्वी समुद्री तट के बढ़ते समुद्री महत्व को परिभाषित करता है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन दोनों जहाजों के डिजाइन, हथियार और सेंसर प्रणालियों में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं, जो समुद्री मिशनों की पूरी श्रृंखला को कुशलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम हैं। मुंबई के मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित उदयगिरी और कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित हिमगिरी देश की बढ़ती जहाज निर्माण क्षमता के साथ साथ भारत के प्रमुख रक्षा पोत कारखानों के बीच तालमेल को भी प्रदर्शित करते हैं। मंत्रालय ने कहा कि उदयगिरी और हिमगिरी के जलावतरण से नौसेना की युद्धक क्षमता बढ़ेगी और युद्धपोत डिजाइन एवं निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का भारत का संकल्प सिद्धि तक पहुंचेगा।
Getting to some sports now. Star Indian weightlifter Mirabai Chanu won gold medal at 2025 Commonwealth Weightlifting Championships in Ahmedabad yesterday and marked a triumphant return to competitive action. The Tokyo Olympic silver medalist lifted a total of 193 kg to set a new Commonwealth Championship record in snatch, clean and jerk and total, and finishing atop the women's 48 kg podium. This included 84 kg in snatch and 109 kg in clean and jerk, both setting new Commonwealth championship records. The win also secured her direct qualification for the Glasgow 2026 Commonwealth Games.
और सुभद्रा, एक स्पोर्ट्स की न्यूज जो है मेरे पास भी है। पेरिस में चल रहे BWF विश्व चैंपियनशिप में आज HS प्रणॉय का सामना पहले दौर में फिनलैंड के जोकिम ओल्फार्ट से होगा। ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:50 पर खेला जाएगा। इससे पहले कल हुए मुकाबले में भारत के लक्ष्य सेन विश्व नंबर एक चीन के शी यू की से सीधे गेम में हार गए। सेन का अभियान केवल 54 तक चला और 17-21, 19-21 से हार के साथ समाप्त हुआ।
Yeah, I have one more, Ravi. This is Diamond League Neeraj Chopra, star Indian javelin thrower. Neeraj Chopra will compete in the Diamond League final in Zurich on Thursday. He will face tough rivals like Anderson Peters of Grenada and Julian Weber of Germany. Chopra, the 2022 Diamond League champion of two-time Olympic medalist, finished second in both 2023 and 24. Of course, he qualified for this year's final in fourth place after taking part in two qualifying events, placing second in Doha with a season best 90.23 meters and winning in Paris with 88.16 meters.
तो ये थे अब तक के कुछ मुख्य समाचार। और अब बेंगलुरु और चेन्नई के समाचारों की जानकारी दे रही हैं सुभद्रा रामचंद्रन।
Yes, Ravi, starting with news from Chennai, President Draupadi Murmu will grace the 10th convocation of the Central University of Tamil Nadu on the 3rd of this next month. Vice Chancellor of University, Professor M. Krishnan, informed the President will present the medals to 45 top-ranking graduates and 44 doctoral graduates. The university is accredited with an A-plus grade by NAAC and consistently ranked among the top 10 institutions in India under the NIRF ranking. Chennai bird watchers were thrilled to get a rare sight of nearly 230 oriental darters, water birds known for their snake-like necks and swift dives at the Pallikaranai marshland over the past 2 months. Their unusual presence has sparked curiosity about changing breeding behaviours. Chennai District Forest Officer V.A. Saravanan explained, darters in southern India usually breed between February and April, and their arrival in such large numbers during the monsoon could point either to altered migration cycles or to improved ecological conditions in the marshland. Long-time naturalists say this sighting marks a significant change in Chennai's birding landscape. Veteran birder V. Santaram of the Madras Naturalist Society recalled that in the 1990s, enthusiasts went to Vedanthangal to catch sight of darters. He said the establishment of the wooded areas and urban wetlands has been critical to attracting them back. Forest officials are now tracking the flock closely. If the numbers sustain, experts believe it could signal a healthier ecological balance in Pallikaranai. Some Bengaluru news now. Karnataka Governor Thavarchand Gehlot presented the Namma Bengaluru Awards to achievers, making significant contributions to the betterment of Bengaluru City. Addressing the guests on the occasion, the governor said, Bengaluru is the capital of innovation, entrepreneurship and technology. The true strength of this metropolis lies in unsung heroes who selflessly serve society by protecting the environment, spreading education and promoting harmony. The governor stressed the city is shaped by its history, culture and infrastructure and determined by the spirit of its citizens, their service, dedication and sacrifice. Rapid urbanization, traffic congestion, water scarcity, waste management and air pollution are challenges that need to be addressed by the achievers and innovators. The governor underscored the need for a collective effort for Bengaluru to retain its identity as the Garden City. The Hubli Tigers posted a 105-run victory over the Shivamogga Lion in their final league match in Maharaja Trophy KSCA T20 cricket match in Mysuru yesterday. Exceptional half-centuries by KL Srijit and Abhinav Manohar gave the Tigers an edge over the Lions. Srijit scored 66 in 40 balls and Abhinav scored 63 in 35 balls. The win ensures the Tigers are top to finish and a place in the qualifier against either the Mangaluru Dragons or Gulbarga mistakes. And Ravi, over to you now for rest of the news.
जी धन्यवाद सुभद्रा. शुरुआत दिल्ली से करते हैं. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कहा कि लोकतंत्र में विचारों, सहमति और असहमति की जितनी अधिक विविधता होती है, लोकतंत्र उतना ही मजबूत होता है. दिल्ली विधानसभा में दो दिवसीय अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सदन के सदस्यों को अपनी आचार संहिता बनाने का प्रयास करना चाहिए और ये चिंतन करना चाहिए कि जनता उनके काम, कार्यप्रणाली, व्यवहार और आचरण को देखती है. ये सम्मेलन केंद्रीय विधानसभा के पहले निर्वाचित भारतीय अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया. विट्ठल भाई पटेल की ऐतिहासिक उपलब्धियों और उनके शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में दिल्ली विधानसभा परिसर में आयोजित वीर विट्ठल भाई पटेल गौरव गाथा प्रदर्शनी 31 अगस्त तक जारी रहेगी. नागरिक, विद्यालयों तथा महाविद्यालयों के छात्र सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक इस प्रदर्शनी को देख सकते हैं. प्रदर्शनी में प्रवेश के लिए दर्शकों को वैध पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है. इस प्रदर्शनी में वीर विट्ठल भाई पटेल से जुड़े अभिलेख, दुर्लभ फिल्म फुटेज, शहीद भगत सिंह की विरासत और साइमन कमीशन, महिला मताधिकार और श्रम सुधार से जुड़े ऐतिहासिक अभिलेख को प्रदर्शित किया गया है. दिल्ली विधानसभा कार्यालय ने बताया है कि ये प्रदर्शनी भारत के पहले विधायी अध्यक्ष के रूप में विट्ठल भाई पटेल के ऐतिहासिक निर्वाचन की स्मृति को समर्पित है. इसमें उनके संसदीय योगदान, स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका तथा भारतीय लोकतांत्रिक परंपराओं के निर्माण में उनके अमूल्य योगदान को दर्शाने वाले दुर्लभ दस्तावेज, अभिलेखीय सामग्री, ऐतिहासिक तस्वीरें तथा विरल वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं. दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा है कि पूरी दिल्ली की निकासी प्रणाली की रूपरेखा तैयार की जा रही है. इससे भविष्य में जल भराव का स्थायी समाधान किया जा सकेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि अगस्त माह में राजधानी दिल्ली में सामान्य से अधिक बारिश हुई, उसके बावजूद दिल्लीवासियों को जल भराव के गंभीर संकट का सामना नहीं करना पड़ा है. श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार के संबंधित विभागों, दिल्ली नगर निगम और अन्य निकायों की पहले से की गई तैयारियों के कारण शहर की सड़कों और निचले इलाकों में जल भराव नहीं हुआ. तो सुभद्रा, ये बहुत ही अच्छा कदम है दिल्ली सरकार का कि जो एक कार्य प्रणाली है वो बनाने जा रहे हैं कि जब भी बारिश होगी और बहुत ज्यादा बारिश होगी तो सड़कों पर पानी का जल भराव नहीं होगा, जिससे कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है आम जनता को और ट्रैफिक की समस्या तो इतना विकराल रूप धारण ले लेती है जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता. जी, आगे बढ़ते हैं और ये दिल्ली की एक लास्ट खबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सुभद्रा. दिल्ली मेट्रो ने कल से मेट्रो सेवा के लिए टिकट किराए में आधिकारिक तौर पर संशोधन किया है. इस बढ़ोतरी के बाद यात्रियों को बढ़ी हुई राशि का भुगतान करना होगा. एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली मेट्रो ने बताया कि किराए में यह बदलाव मामूली है, जिसमें ज्यादातर लाइनों पर 1 रुपए से लेकर 4 रुपए तक के बीच ही बढ़ोतरी होगी और वहीं एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर किराए में 5 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी. आगे बढ़ते हैं, चलते हैं महाराष्ट्र मुंबई की ओर. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हजूर साहिब नांदेड़ और मुंबई सीएसएमजी के बीच पहली विशेष वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे. ये कार्यक्रम हजूर साहिब नांदेड़ स्टेशन पर कई गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में आयोजित किया जाएगा. 27 अगस्त से सीएसएमटी जालना वंदे भारत एक्सप्रेस का विस्तार नांदेड़ तक किया जाएगा, जबकि जालना सीएसएमटी सेवा 28 अगस्त से नांदेड़ से शुरू होगी. ये ट्रेन नांदेड़ और मुंबई के बीच 610 किलोमीटर की दूरी केवल 9 घंटे 25 मिनट में तय करेगी, जिससे मौजूदा देवगिरी एक्सप्रेस की तुलना में यात्रा का समय लगभग 2 घंटे कम हो जाएगा. ये ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी, जिससे नांदेड़ और परभणी से मुंबई के यात्रियों के लिए सुविधाजनक दिन की यात्रा संभव होगी. ये सेवा 20 कोचों के साथ संचालित होगी, जिसमें 2 एग्जीक्यूटिव चेयर कार और 18 चेयर कार शामिल हैं तथा ये दादर, ठाणे, कल्याण, नासिक रोड, मनमाड, औरंगाबाद, जालना और परभणी में रुकेंगी. आगे बढ़ते हैं, चलते हैं पश्चिम बंगाल की ओर. पश्चिम बंगाल सरकार राज्य सरकार की तांत साथी परियोजना के अंतर्गत दुर्गा पूजा से पहले लगभग 1 करोड़ तांत साड़ियां खरीदेगी. साड़ियां 6 स्थानों से लाई जाएंगी. राज्य के हथकरघा मंत्री स्वप्न देवनाथ ने कहा कि सरकार इस वर्ष तांत सहकारी समितियों से 10 करोड़ साड़ियां खरीदने का लक्ष्य लेकर चल रही है. राज्य सरकार का प्रमुख हथकरघा विक्रेता सार्वजनिक उपक्रम तंतुजा इस परियोजना का नोडल संगठन है. वर्तमान में पश्चिम बंगाल में तंतुजा के 64 शोरूम हैं। तंतुजा की दुकानें हथकरघा साड़ियां बेचती हैं, जिन्हें पश्चिम बंगाल में तांत साड़ियां कहा जाता है। तो सुभद्रा, ये थे अब तक के कुछ मेट्रो समाचार। आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे रवि और सुभद्रा के साथ। और कार्यक्रम आज सवेरे में अब बात मौसम की। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज तेज बारिश आने की संभावना है। बारिश तो वैसे सुभद्रा सुबह से ही हो रही है। न्यूनतम तापमान बस 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मुंबई में आज बादल छाए रहेंगे और भारी बारिश होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 24 और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में भी तेज बारिश आने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। सुभद्रा,
यस, चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर इज 26 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 34। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद वन टू स्पेल्स ऑफ रेन और थंडर शावर्स। द मिनिमम टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 27। हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद मॉडरेट रेन। द टेम्परेचर विल हैव बिटवीन अ मिनिमम ऑफ 22 एंड अ मैक्सिमम ऑफ 29 डिग्री सेल्सियस।
और सुभद्रा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और इतिहास के पन्नों को पलटें, हम अपने श्रोताओं को जानकारी दे दें कि आज महिला समानता दिवस यानी कि वुमेन्स इक्वालिटी डे है, जो अमेरिका के संदर्भ में प्रत्येक वर्ष 26 अगस्त को मनाया जाता है।
टुडे वाज द डे द 19th अमेंडमेंट बिकेम पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस, गिविंग वुमेन द राइट टू वोट। सो दैट वाज द रीजन व्हाई दिस डे केम इनटू बर्थ।
जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि 26 अगस्त 1920 को अमेरिका में 19वां संशोधन आधिकारिक रूप से अपनाया गया और इसने दशकों के संघर्ष के बाद अमेरिकी महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया। और अब ये दिन अमेरिका में महिला समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वैसे भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में आजादी के बाद से ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त था, लेकिन पंचायतों और नगर निकायों में चुनाव लड़ने का कानूनी अधिकार 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से मिला। और इसी का परिणाम है कि आज भारत की पंचायतों में महिलाओं की 50% से अधिक की भागीदारी है। और अब पलट लेते हैं इतिहास के पन्नों को और जान लेते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या क्या हुआ। तो 1303 में आज ही के दिन अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर कब्जा किया था।
And 1789, this day, a momentous milestone was reached in the French Revolution as the National Constituent Assembly sanctioned the Declaration of the Rights of Man and the Citizen on this day. This foundational document enshrined principles of liberty, equality and fraternity, significantly shaping modern discourse on politics and human rights.
1914 mein aaj ke din Bengal ke krantikariyon ne Kolkata mein yani ki तत्कालीन कलकत्ता में ब्रिटिश बेड़े पर हमला कर 50 माउजर और 46,000 राउंड गोलियां लूटी थीं। 1920 में आज के दिन अमेरिका में महिलाओं को मताधिकार मिला, जिसकी जानकारी हम पहले ही अपने शोधों को
दे चुके हैं। 1929 दिस डे अ थ्रिलिंग फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट टुक फ्लाइट ऑन दिस डे एज यूनाइटेड स्टेट्स विटनेस द बर्थ ऑफ इट्स फर्स्ट रोलर कोस्टर। दिस इनोवेशन मार्क द इंसेप्शन ऑफ अ कल्चरल फैसिनेशन विद अम्यूजमेंट पार्क, डिलीवरिंग एन एक्सिलरेटिंग वे फॉर पीपल टू एक्सपीरियंस स्पीड, ट्विस्ट एंड टर्न्स। एंड ऑन 1957 दिस डे Soviet Union announced it had successfully tested an intercontinental ballistic missile, ICBM, and 1966-26 fighting erupted in Namibia. This marked the start of the armed struggle against South African rule. The date is now commemorated as Heroes Day in Namibia.
1977 में आज के दिन जर्मनी के म्यूनिक शहर में 20वें ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी।
And 2002 Earth Summit addresses global environmental challenges. A colossal congregation unfolded. 60,000 representatives and politicians from 174 countries convened for the Earth Summit in Johannesburg, South Africa.
और अब समय हो गया है कुछ विशेष महानुभावों की पुण्यतिथियों, जयंतियों या जन्मदिन के बारे में अपने श्रोताओं को जानकारी देने का। तो इस क्रम में आज सबसे पहला नाम है राधे श्याम कथावाचक का, जिनका जन्म हुआ 25 नवंबर 1890 बरेली उत्तर प्रदेश में और आपने संसार से विदा ली 26 अगस्त 1963 को। राधे श्याम कथावाचक ने रामायण की कथा को खड़ी बोली पद्य के द्वारा कई खंडों में लिपिबद्ध किया। ये रचना हिंदी क्षेत्रों, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के गांवों में पिछले अनेक दशकों में बहुत ही लोकप्रिय रही है। राधे श्याम रामायण में वर्णित नैतिक मूल्यों को जन साधारण तक पहुंचाने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा और आपने अपनी आत्मकथा भी लिखी है। राधे श्याम कथावाचक द्वारा लिखित मुख्य रचनाओं में शामिल हैं श्री कृष्णावतार, रुक्मणि मंगल, द्रौपदी स्वयंवर, उषा अनिरुद्ध और वीर अभिमन्यु आदि।
Death anniversary of Anthony Van Leeuwenhoek, Dutch scientist known as the father of microbiology. Leeuwenhoek was a Dutch textile merchant who became a pioneer of microbiology, and of course he was the first man to observe bacteria in water in 1676. His discovery widespread, of course, later on. He repeated his experiments to prove the existence of microorganisms in blood cells, plants, water and more. And Ravi, today, Indian Albanian Catholic nun, Mother Teresa, who was later christened Saint Teresa by the Roman Catholic Church, was born this day in 1910. Of course, she founded the Missionaries of Charity in Kolkata in 1950. And she, of course, Ravi, worked tirelessly for the upliftment of the poor, helped the sick, orphan and dying people for more than 45 years, paved the way for the spread of Missionaries of Charity.
जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और इस महान हस्ती पर यानी कि भारत रत्न मदर टेरेसा पर ये गीत जो है बिल्कुल सही बैठता है।
तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। कश्ती कोई डूबती पहुंचा दो किनारे।
और अब जिस विशिष्ट व्यक्ति के बारे में सुभद्रा हम बात करने वाले हैं, आइए पहले उनकी आवाज सुन लेते हैं।
चाय तो बड़ी मजेदार बनी, कौन सी पत्ती लाई थी?
वही जो रोज पीते हो।
सच कहूँ भाई, मुझे तो पहली बार पता चला कि चाय में खुशबू भी होती है।
जी हाँ, जैसे कि रोज आपको कवाई मिलता रहा है।
अरे भाई, मैं तुम्हें थोड़े ही कह रहा हूँ, मैं तो रघु से पहले जो रसोईया था उसे कह रहा हूँ, वरना तुम्हारे हाथों की चाय पी होती तो कयामत होती।
जी हाँ, ये आवाज़ है अवतार किशन हंगल यानी कि ए के हंगल साहब की, जिनका जन्म हुआ 1 फरवरी 1917 सियालकोट में और आपने इस दुनिया से विदा ली 26 अगस्त 2012 मुंबई में। आप हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और दूरदर्शन कलाकार थे। वर्ष 1967 से हिंदी फिल्म उद्योग का हिस्सा रहे हंगल साहब ने लगभग 225 फिल्मों में काम किया। उन्हें फिल्म परिचय और शोले में अपनी यादगार भूमिकाओं के लिए जाना जाता है, और एक भूमिका ये बावर्ची में भी थी इनकी, जिनका हमने डायलॉग अभी सुनवाया अपने श्रोताओं को। और सन 1930 से 1947 के बीच भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हंगल साहब सक्रिय रहे, और सुभद्रा वे 2 बार जेल भी गए थे।
ओके, नाउ फ्रेंड्स, प्योर जैज इज गोइंग टू बी अमेरिकन सैक्सोफोनिस्ट बैंड लीडर कंपोजर ब्रैनफर्ड मर्सालिस सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे टुडे। हिज फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट द क्लैरिनेट गेव द वे टू द अल्टो एंड देन द टेनर and soprano saxophone, which the teenage Branford began working in local bands. Then came an opportunity to join his brother, the iconic Wynton and Art Blakey, a legendary jazz messengers band. Now Branford is busy educating new crowds, new generation, to the magical world of jazz and its various new forms. And another jazz player, he's actually a blues player, best known for his work with the band Tribal Tech, Chick Corea and Joe Zawinul. He's a fusion man with blues on his mind. So we get this wonderful amalgamation of various rhythmic sounds that blend jazz with blues, rock and funk, creating a unique guitar voice that's pure bliss. Happy birthday to guitarist, American fusion man, Scott Henderson.
और आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम के अंत में जानकारी देते हैं। भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेताओं में से एक रहे इंद्र कुमार, या कह लीजिए इंद्र कुमार के बारे में, जिनका जन्म हुआ 26 अगस्त 1972 को। आपने 20 से भी अधिक बॉलीवुड फिल्मों में काम किया। इंद्र कुमार ने 1996 में फिल्म मासूम से अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की, और फिलहाल सुन लेते हैं इंद्र कुमार पर फिल्माया गया फिल्म का ये गीत, ये जो तेरी पायलों की छन छन है।
ये जो तेरी पायलों की छन छन है, आशिकों के दिल की ये धड़कन है, छन छन सुने जाए हाय हाय करे जाए, पायल है तेरी या उलझन है।
चलते चलते आज का विचार कि लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। इसी विचार के साथ इजाजत दीजिए रवि कपूर और सुभद्रा रामचंद्रन को आज सवेरे कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की।
Stay tuned for coming up now is Samacha Prabhat, the Hindi News Bulletin, followed the morning news in English at 8:15. Thanks for tuning in, friends. Have a great day.
Namaskar.